एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की परतें खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम काफी कुछ जानते हैं, एनलाइटनमेंट, या जिसे प्रबोधन काल कहते हैं।
हाँ, वही दौर जिसने हमें तर्क दिया, विज्ञान दिया, आधुनिक सोच दी, या कम से कम हमें यही बताया गया है।
बिल्कुल। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी साधी है? आज हम जॉन रॉबर्टसन की किताब दी एनलाइटनमेंट पर बात करेंगे। और देखिए, ये किताब इसी जानी पहचानी कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है।
सही काम। ये किताब पूछती है, क्या एनलाइटनमेंट का मतलब सिर्फ पेरिस, सिर्फ वोल्टेयर, डिडरो और वो फ्रांसीसी क्रांति की तैयारी, या कहानी कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरी, ज्यादा फैली हुई?
और ये सवाल आज भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि उन्हीं विचारों ने कहीं ना कहीं हमारी आज की दुनिया की नींव रखी है, हमारा समाज, हमारी राजनीति, हमारा सोचने का तरीका भी।
हाँ, और रॉबर्टसन हमें एक अलग ही नजरिया देते हैं। वो दिखाते हैं कि ये असर कितना कॉम्प्लेक्स था, कितना फैला हुआ था, शायद हमारी सोच से भी ज्यादा।
तो चलिए इस बौद्धिक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं रॉबर्टसन क्या कहते हैं।
हाँ, तो पहले ये समझ लें कि ये जॉन रॉबर्टसन हैं कौन, जिनकी किताब स्थापित सोच को इतनी चुनौती दे रही है।
हाँ बताइए।
देखिए, ये कोई मामूली इतिहासकार नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल थॉट हिस्ट्री के एमेरिटस प्रोफेसर हैं, ऑक्सफर्ड से भी जुड़े रहे हैं। मतलब इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है यूरोप के 17वीं-18वीं सदी के बौद्धिक इतिहास को समझने में।
अच्छा, और उनकी खासियत क्या है? मतलब उनका अप्रोच अलग कैसे है?
उनकी खास बात यह है कि वो सिर्फ एक देश या एक भाषा में बंधकर नहीं सोचते। रॉबर्टसन कई भाषाओं में, मतलब ओरिजिनल सोर्सेस पढ़ते हैं कि उस जमाने के लोगों ने असल में लिखा क्या था।
ओह, ये तो बहुत मेहनत का काम है।
बिल्कुल, वो पूरे यूरोप के आर्काइव्स खंगालते हैं। एक तरह से समझिए, वो उन बौद्धिक धागों को जोड़ते हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, क्योंकि हम इतिहास को देशों की सीमाओं में बांट कर देखते हैं।
हाँ, ये बात तो है। हम अक्सर फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी ऐसे अलग अलग देखते हैं।
सही। और रॉबर्टसन का नजरिया इसलिए भी अनोखा है क्योंकि वो बाद की व्याख्याओं से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि उस दौर के विचारक खुद क्या हासिल करना चाहते थे, उनके अपने घोषित लक्ष्य क्या थे।
मतलब वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि बाद में लोगों ने एनलाइटमेंट में क्या मतलब निकाला, बल्कि ये कि वो लोग खुद क्या कर रहे थे।
वो पूछते हैं, क्या ये सब सिर्फ धर्म और राजा के खिलाफ एक लड़ाई थी, जैसा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद मान लिया गया, या उनका इरादा कुछ और था, शायद ज्यादा कंस्ट्रक्टिव, कुछ बनाने का।
यही सवाल उनकी किताब की केंद्र में है। तो ये किताब आखिर कहती क्या है? क्या है उनका मुख्य तर्क?
मूल रूप से रॉबर्टसन कहते हैं कि एनलाइटनमेंट, खासकर 1680 से 1760 के बीच का जो दौर था, वो सिर्फ कुछ बिखरे हुए विचारों का जमघट नहीं था, वो एक सोची समझी, एक कोहेरेंट बौद्धिक परियोजना थी, एक इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट।
अच्छा, एक प्रोजेक्ट।
हाँ, और इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य बहुत बड़ा था, मनुष्य और समाज का विज्ञान स्थापित करना, साइंस ऑफ मैन एंड सोसाइटी।
मनुष्य का विज्ञान, ये सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, आसान शब्दों में?
आसान शब्दों में, जैसे न्यूटन ने प्रकृति के नियम खोजे थे, ग्रेविटी, मोशन के नियम, है ना,
हाँ,
बस वैसे ही ये विचारक मानव स्वभाव, नैतिकता, समाज कैसे काम करता है, सरकार कैसे चलनी चाहिए, इन सब के पीछे के सिद्धांत, उनके नियम समझना चाहते थे। वो इंसानी दुनिया को भी एक तरह से वैज्ञानिक नजरिए से देखना चाहते थे।
मतलब ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, सबूतों के आधार पर।
बिल्कुल, अनुभव और विश्लेषण के आधार पर।
तो ये सिर्फ पुरानी मान्यताओं जैसे धर्म या राजशाही की आलोचना करने तक ही सीमित नहीं था, ये कुछ नया बनाने की कोशिश थी।
हाँ, रॉबर्टसन का यही मेन पॉइंट है। उनका जोर इस बात पे है कि भाई, मुख्य उद्देश्य कोई क्रांति लाना या धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकना नहीं था।
तो फिर क्या था?
उद्देश्य था अनुभवजन्य तरीकों का इस्तेमाल करके, मतलब एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर आधारित तरीकों से इंसान और समाज को बेहतर ढंग से समझना और फिर उसमें सुधार लाना। लक्ष्य था एक ज्यादा खुशहाल, ज्यादा नैतिक और बेहतर ढंग से चलने वाला समाज बनाना।
और सबसे चौंकाने वाली बात जो रॉबर्टसन कहते हैं वो शायद ये है कि इस मनुष्य के विज्ञान का सबसे जोरदार काम पेरिस में नहीं, बल्कि कहीं और हो रहा था।
हाँ, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है उनकी कहानी में। वो कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम काम स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग और इटली के नेपल्स जैसे शहरों में हो रहा था।
एडिनबर्ग और नेपल्स,
हाँ,
पेरिस नहीं।
ये तो पूरी कहानी पलट देता है।
बिल्कुल।
चलिए उनके तर्कों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं।
हाँ बताइए, तो वो शुरुआत कैसे करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं अपनी बात?
वो सबसे पहले उसी आम धारणा को तोड़ते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी कि एनलाइटनमेंट मतलब फ्रांस मतलब वोल्टेयर, दिदेरो मतलब धर्म का विरोध और क्रांति की तैयारी। वो कहते हैं भाई ये तस्वीर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बनी है।
अच्छा,
ये उस दौर की, खासकर उसके शुरुआती रचनात्मक दौर की जो करीब 1680 से 1760 तक चला, पूरी सच्चाई नहीं बताती। वो हमें कहते हैं कि जरा उस जमाने के विचारकों के अपने लेखन को देखो, उनके घोषित लक्ष्य क्या थे।
और वो पाते हैं कि उनका मुख्य जुनून था यही, मनुष्य का विज्ञान स्थापित करना।
हाँ, अब सवाल उठता है कि इस नई सोच की जड़ें कहाँ थीं। जाहिर है 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति, खासकर न्यूटन का काम, एक बड़ी प्रेरणा थी।
हाँ वो तो स्वाभाविक लगता है।
लेकिन रॉबर्टसन बताते हैं कि इन विचारकों को दो पुरानी जमी हुई विचार पद्धतियों से भी पार पाना था।
कौन सी दो?
पहली थी पारंपरिक धार्मिक शिक्षा, जिसे स्कॉलिस्टिसिज्म कहते हैं, जो सदियों से चली आ रही थी और हर सवाल का जवाब मुख्य रूप से धर्म ग्रंथों या पुराने दार्शनिकों में ढूंढती थी।
और दूसरी?
दूसरी थी डेकार्त का शुद्ध तर्कवाद, रैशनलिज्म, जो मानता था कि सच्चा ज्ञान सिर्फ तर्क से ही मिल सकता है, अनुभव की उतनी जरूरत नहीं।
अच्छा, तो इन दोनों से आगे कैसे बढ़े?
यहाँ जॉन लॉक जैसे विचारकों का अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म बहुत काम आया। लॉक ने कहा कि भाई ज्ञान हमारे दिमाग में पहले से नहीं होता, वो अनुभव से, हमारी इंद्रियों से आता है।
हाँ, टेबुला रासा वाली बात।
बिल्कुल, इस सोच ने पूरा फोकस ही बदल दिया। अब जोर इस बात पर आ गया कि इंसान असल में कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, यानी मानव मन, भावनाएं और समाज का वास्तविक प्रैक्टिकल अध्ययन।
तो ये मनुष्य का विज्ञान असल में कहाँ पनप रहा था?
रॉबर्टसन हमें सबसे पहले स्कॉटलैंड ले चलते हैं। हाँ, 18वीं सदी का स्कॉटलैंड, खासकर एडिनबर्ग और ग्लासगो शहर। ये वो दौर था जब 1707 में स्कॉटलैंड का इंग्लैंड के साथ राजनीतिक विलय हो चुका था।
हाँ, एक्ट ऑफ यूनियन।
सही। तो अपनी राजनीतिक आज़ादी खोने के बाद स्कॉटिश बुद्धिजीवियों ने जैसे ठान लिया कि वो बौद्धिक दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे। वहाँ के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, वकील, यहाँ तक कि चर्च के पादरी भी इस मुहिम में शामिल थे।
अच्छा, तो ये एक तरह का राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बन गया था उनके लिए।
हाँ, कह सकते हैं। और वहाँ कौन बड़े नाम सामने आए? बहुत सारे थे, जैसे फ्रांसिस हचिसन।
हचिसन, उन्होंने क्या किया?
उन्होंने मॉरल सेंस यानी नैतिक भावना का विचार दिया कि सही गलत की समझ हमारे अंदर ही होती है, ये कोई बाहरी आदेश नहीं है। फिर आए डेविड ह्यूम, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण थे।
ह्यूम का नाम तो बहुत सुना है।
हाँ, ह्यूम ने अनुभवजन्य पद्धति को बहुत सख्ती से मानव स्वभाव, कारण कार्य संबंध यानी कॉजेशन और नैतिकता पर लागू किया। उनकी मशहूर किताब अ ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर का मकसद ही यही था, इंसानी मामलों में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की विधि लाना।
ओह, और एडम स्मिथ, उन्हें तो हम अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जानते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस।
सही कहा, लेकिन रॉबर्टसन दिखाते हैं कि स्मिथ का काम भी इसी बड़े मनुष्य के विज्ञान का हिस्सा था। उनकी पहली बड़ी किताब अर्थशास्त्र पर नहीं बल्कि द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स थी।
ओ अच्छा, वो किस बारे में थी?
वो सहानुभूति यानी सिंपति पर आधारित थी, कि हम कैसे दूसरों की भावनाओं को समझकर एक नैतिक और सामाजिक व्यवस्था बनाते हैं। उनके लिए अर्थशास्त्र यानी वेल्थ ऑफ नेशंस इसी बड़ी सामाजिक समझ का एक एप्लीकेशन था।
मतलब इकोनॉमिक्स भी समाज और नैतिकता से जुड़ा था उनके लिए।
बिल्कुल, एडम फर्ग्यूसन जैसे विचारकों ने यह समझने के लिए कि समाज शिकारी संग्राहक से खेती और फिर व्यापार तक कैसे विकसित हुए, एक तरह के अनुमानिक इतिहास या कंजेक्चुरल हिस्ट्री का इस्तेमाल किया।
तो स्कॉटिश एनलाइटनमेंट की खासियत क्या थी, क्या चीज उसे अलग बनाती थी?
खासियत ये थी कि ये काफी हद तक विश्वविद्यालयों में केंद्रित एक सामूहिक प्रयास था। ये वहां के उदार प्रोटेस्टेंट धर्म प्रेस्बिटेरियनिज्म से टकराता नहीं था बल्कि उसके साथ चल सकता था।
ये दिलचस्प है।
हाँ, और इसका जोर क्रांति पर नहीं बल्कि व्यावहारिक सुधारों पर था, शिक्षा, कानून, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने पर। ये जमीनी स्तर पर धीरे धीरे बदलाव लाना चाहते थे।
कमाल है। तो ये कहानी सिर्फ स्कॉटलैंड की नहीं है, रॉबर्टसन हमें इटली भी ले जाते हैं, नेपल्स।
बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि ये बौद्धिक आंदोलन सिर्फ प्रोटेस्टेंट देशों तक सीमित नहीं था। कैथोलिक इटली का नेपल्स शहर।
हाँ, नेपल्स तो उस समय काफी पिछड़ा हुआ माना जाता था, सामंती व्यवस्था, चर्च का भारी दबदबा।
सही, और वहीं पर उसी माहौल में एनलाइटनमेंट की एक मजबूत धारा बह रही थी।
लेकिन क्या वहां का माहौल स्कॉटलैंड जैसा खुला था इन नए विचारों के लिए? ये थोड़ा हैरान करता है।
माहौल अलग था, इसलिए जोर भी थोड़ा अलग था। नेपल्स में मुख्य चिंता कानूनी और आर्थिक सुधारों की थी, ताकि राज्य ज्यादा आधुनिक और कारगर बन सके। यहां भी मनुष्य के विज्ञान का ही इस्तेमाल हुआ, लेकिन ज्यादा ध्यान इतिहास और कानून यानी ज्यूरिसप्रूडेंस के अध्ययन पर था।
अच्छा, तो वो अपने समाज की समस्याओं का हल इतिहास और कानून में ढूंढ रहे थे।
हाँ, यहाँ के मुख्य विचारक कौन थे? एक बड़ा नाम था, पेत्रू ज़ियानून।
ज़ियानून,
उन्होंने नेपल्स के राज्य का एक नागरिक इतिहास, सिविल हिस्ट्री ऑफ द किंगडम ऑफ नेपल्स लिखा। सोचिए, उस जमाने में कितना रेडिकल रहा होगा।
क्यों, उसमें क्या था?
और उन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स का इस्तेमाल करके चर्च की राजनीतिक सत्ता पर सवाल उठाए और कहा कि भाई, राज्य का कानून, सिविल लॉ, सबसे ऊपर होना चाहिए। ये सीधे सीधे चर्च के वर्चस्व को चुनौती थी, वो भी इतिहास के सबूतों के आधार पर।
और एक और नाम आता है, ज्ञान बतिस्ता वीको। उनका काम तो बहुत ही ओरिजिनल माना जाता है ना?
हाँ, वीको की किताब न्यू साइंस अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने समाज और इतिहास के विकास का एक साइक्लिकल थ्योरी, एक चक्रीय सिद्धांत दिया। उनका एक मशहूर कथन है कि हम उन चीजों को सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं जिन्हें हमने खुद बनाया है, यानी इतिहास और समाज।
मतलब इतिहास को समझने के लिए हमें मानवीय नजरिए की जरूरत है, ना कि सिर्फ धार्मिक।
बिल्कुल, वीको यही दिखा रहे थे। तो नेपल्स का उदाहरण दिखाता है कि स्कॉटलैंड की तरह ही यहां भी विचारक समाज को समझने और सुधारने के लिए इतिहास और कानून जैसे बौद्धिक औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे। लक्ष्य वही था, बेहतर समाज।
रास्ते थोड़े अलग थे, लेकिन मंजिल वही थी।
एकदम सही। और अब रॉबर्टसन हमें वापस फ्रांस ले आते हैं, जहां से एनलाइटमेंट की कहानी अक्सर शुरू की जाती है, वॉल्टेयर, दिदेरो, रूसो।
हाँ, फाइनली फ्रांस के बाद। तो रॉबर्टसन उन्हें कैसे देखते हैं? क्या वो उन्हें खारिज कर देते हैं?
नहीं, खारिज नहीं करते, लेकिन उनकी भूमिका को एक नए नजरिए से देखते हैं, उसे रिकॉन्टेक्स्टुलाइज करते हैं। वो मानते हैं कि ये फ्रांसीसी विचारक या फिलोसोफर्स बेहद प्रतिभाशाली आलोचक थे, व्यंग्यकार थे, प्रोपोगैंडिस्ट थे।
उन्होंने उस समय के फ्रांसीसी राजतंत्र और कैथोलिक चर्च की जबरदस्त आलोचना की है ना?
हाँ, और वो आलोचना बहुत जरूरी भी थी। वॉल्टेयर का वो मशहूर नारा याद है, इकरा जिलम फाम, यानी उस बदनाम चीज को कुचल दो। उनका इशारा चर्च के अंधविश्वास और असहिष्णुता की तरफ था। उनका काम उस दमनकारी माहौल में एक तरह का कल्चरल वॉरफेयर था।
तो फिर फर्क क्या था स्कॉटलैंड और नेपल्स से, अगर वो भी आलोचना कर रहे थे?
रॉबर्टसन का तर्क है कि फ्रांसीसी विचारों का जोर व्यवस्था की आलोचना और उसे उखाड़ फेंकने पर ज्यादा था, बजाय कि स्कॉटलैंड और नेपल्स की तरह एक व्यवस्थित मनुष्य का विज्ञान बनाने पर। उनका संदर्भ ज्यादा राजनीतिक था, ज्यादा टकराव वाला था।
और फिर आगे फ्रांसीसी क्रांति।
हाँ, 1789 में, और उस क्रांति ने रॉबर्टसन के अनुसार एनलाइटनमेंट की पूरी छवि पर जैसे कब्जा कर लिया। अचानक से एनलाइटनमेंट का मतलब ही हो गया क्रांति, रेडिकलिज्म, नास्तिकता और फ्रांस।
और स्कॉटलैंड और नेपल्स की वो शांत सुधारवादी परियोजनाएं,
वो जैसे इतिहास के हाशिए पर चली गईं, उन्हें भुला दिया गया या कम महत्वपूर्ण मान लिया गया।
ये तो वाकई पूरी तस्वीर ही बदल देता है। तो इस पूरी चर्चा से, रॉबर्टसन की किताब से, हम क्या मुख्य बातें, क्या की टेकअवेज निकाल सकते हैं?
हाँ, कुछ बड़े सबक हैं यहाँ। पहला तो ये कि एनलाइटनमेंट सिर्फ फ्रांस की कहानी नहीं थी, ये पूरे यूरोप में फैला एक आंदोलन था। स्कॉटलैंड, नेपल्स, जर्मनी, कई केंद्र थे इसके, सबके अपने अपने रंग थे।
दूसरी बात, तर्क और आस्था हमेशा दुश्मन नहीं थे। ये सोचना कि एनलाइटनमेंट पूरी तरह धर्म विरोधी था, ये एक सरलीकरण है। कई विचारक, खासकर स्कॉटलैंड और नेपल्स में, धर्म और तर्क में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे। वो सुधार चाहते थे, विनाश नहीं।
तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य के विज्ञान का विकास एनलाइटनमेंट का केंद्रीय लक्ष्य था। मानव स्वभाव, समाज, अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से समझने की ये कोशिश आधुनिक सामाजिक विज्ञानों की नींव बनी। ये एक बहुत बड़ी बौद्धिक छलांग थी।
चौथा, व्यापार और वाणिज्य को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं समझा गया, बल्कि उसे सभ्यता बढ़ाने वाली, सिविलाइजिंग फोर्स माना गया। एडम स्मिथ जैसे लोग मानते थे कि व्यापार लोगों को करीब लाता है, सहयोग सिखाता है और समाज को नैतिक रूप से भी बेहतर बनाता है।
हाँ, ये विचार आज भी कितना प्रासंगिक है, है ना? पांचवा, इंसान को सिर्फ तर्कशील प्राणी नहीं माना गया। ह्यूम और स्मिथ जैसे विचारकों ने भावनाओं, सहानुभूति, सामाजिक रिश्तों के महत्व पर जोर दिया। वो समझते थे कि इंसान सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी चलता है।
ये भी बहुत अहम बात है। और छठा
एनलाइटमेंट का मुख्य जोर सुधार पर था, क्रांति पर नहीं। ज्यादातर विचारक मौजूदा व्यवस्था में धीरे धीरे सोच समझ कर बदलाव चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति एक अलग विस्फोटक घटना थी जिसने बाद में एनलाइटमेंट की छवि को बदल दिया।
अगर रॉबर्टसन की बातों को कुछ यादगार पंक्तियों या विचारों में समेटें तो वो क्या होंगी?
हाँ, कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं, जैसे उनका ये कहना कि एनलाइटमेंट का केंद्रीय लक्ष्य केवल तर्क को ऊपर रखना नहीं था बल्कि मनुष्य का विज्ञान बनाना था, यानी मानव दुनिया के लिए वही करना जो न्यूटन ने प्राकृतिक दुनिया के लिए किया था।
हाँ, ये बात इस पूरी परियोजना की महत्वाकांक्षा को दिखाती है। ये सिर्फ आलोचना नहीं, निर्माण की बात थी, मानव समाज को समझने का एक नया व्यवस्थित तरीका बनाने की कोशिश।
या फिर ये विचार, एनलाइटनमेंट की असली धड़कन सुनने के लिए हमें सिर्फ पेरिस के शोरगुल वाले सलूनों में नहीं बल्कि एडिनबर्ग के शांत यूनिवर्सिटी हॉलों और नेपल्स की पुरानी अदालतों में भी कान लगाना होगा।
ये हमें याद दिलाता है कि जरूरी नहीं कि सबसे महत्वपूर्ण काम वहीं हो रहा हो जहां सबसे ज्यादा हल्ला हो। इतिहास के अनदेखे कोनों में भी महान विचार पनप सकते हैं।
और ये वाला भी बहुत अच्छा है, वाणिज्य को सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं समझा गया बल्कि एक ऐसी ताकत माना गया जो समाज को सभ्य बना सकती है, भौतिक तरक्की के साथ साथ नैतिक सुधार भी ला सकती है।
ये दिखाता है कि आर्थिक सोच के पीछे भी गहरे नैतिक और सामाजिक सवाल होते हैं। आज जब हम बाजार और विकास की बात करते हैं तो ये सोचना जरूरी है कि इसका हमारे समाज और मूल्यों पर क्या असर पड़ रहा है, ना?
बिल्कुल। और अंत में ये सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाला विचार, फ्रांसीसी क्रांति एनलाइटनमेंट का जरूरी नतीजा नहीं थी बल्कि ये एक ऐसी घटना थी जिसने एनलाइटनमेंट की हमारी समझ को थोड़ा धुंधला कर दिया। इसने एक मूल रूप से सुधारवादी और बौद्धिक परियोजना पर क्रांति और कट्टरपंथ का रंग चढ़ा दिया।
ये इतिहास को पढ़ने का एक बहुत जरूरी सबक है। किसी घटना के बाद जो हुआ उसे देखकर ये मान लेना कि वही उसका असली मकसद था गलत हो सकता है। हमें इरादों और नतीजों को अलग अलग देखना सीखना होगा।
तो ये सब बातें सिर्फ इतिहास के लिए नहीं हैं, रॉबर्टसन का विश्लेषण हमें आज के जीवन के लिए भी बहुत कुछ सिखाता है।
हाँ बिल्कुल, पहली सीख तो यही है कि किसी भी कहानी के स्थापित पॉपुलर वर्जन पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। जैसे रॉबर्टसन ने एनलाइटनमेंट की कहानी पर सवाल उठाया, हमें भी अपने आसपास की बनी बनाई धारणाओं की गहराई में जाने की कोशिश करनी चाहिए। सच अक्सर ज्यादा जटिल होता है।
दूसरी बात, विचारों को उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके संदर्भ में समझना जरूरी है। स्कॉटलैंड और नेपल्स के उदाहरण दिखाते हैं कि एक ही विचार अलग अलग माहौल में कैसे अलग रूप ले लेता है। ये हमें आज के सामाजिक आंदोलनों या राजनीतिक विचारों को बेहतर समझने में मदद करता है।
तीसरा, व्यवहारिक सुधार की अहमियत। रॉबर्टसन जिन विचारकों को उभारते हैं वे बड़े बदलाव चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे सोच समझकर। आज की हमारी दुनिया जो अक्सर इतनी पोलराइज्ड लगती है, वहां ये याद रखना जरूरी है कि शायद टिकाऊ बदलाव धैर्य, संवाद और ठोस जमीनी सुधारों से आता है, सिर्फ नारेबाजी से नहीं।
चौथा, अलग अलग विषयों को जोड़कर सोचने का फायदा। इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग, मनुष्य का विज्ञान अपने आप में कई विषयों, दर्शन, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान को जोड़ता था। आज की हमारी बड़ी समस्याएं भी ऐसी ही हैं, उनका हल किसी एक डिब्बे में नहीं है।
हाँ, जैसे क्लाइमेट चेंज या इनइक्वालिटी। और पांचवा,
नए विचारों के अलग अलग केंद्रों को पहचानना और उनका सम्मान करना। रॉबर्टसन हमें याद दिलाते हैं कि इनोवेशन सिर्फ कुछ मशहूर जगहों पर ही नहीं होता, दुनिया के कोने कोने में, छोटे शहरों में, अनदेखी जगहों पर भी कमाल के विचार पनप सकते हैं। हमें उन्हें खोजना और सराहने की जरूरत है।
तो अगर रॉबर्टसन की किताब से एक सबसे बड़ी बात लेके जानी हो तो वो क्या होगी आपके लिए?
मेरे लिए शायद ये कि महान बौद्धिक और सामाजिक बदलाव अक्सर किसी एक अकेले हीरो या देश की वजह से नहीं होते, ये एक नेटवर्क का, एक इकोसिस्टम का नतीजा होते हैं। विचारों का मिलना, टकराना, अलग अलग जगहों पर ढलना, विकसित होना।
और मेरे लिए शायद ये कि तर्क और सबूत तभी सबसे ज्यादा कारगर होते हैं जब उनके साथ इंसान की भावनाओं, उसके सामाजिक रिश्तों और उसकी संस्कृति की गहरी समझ जुड़ी हो। सिर्फ लॉजिक से या डेटा से समाज नहीं बदलता, इंसान को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ता है। एनलाइटनमेंट के ये विचारक सिर्फ तर्क के युग के नायक नहीं थे, वे मानव स्वभाव को समझने के भी नायक थे।
बिल्कुल, रॉबर्टसन हमें एनलाइटनमेंट की एक ज्यादा समृद्ध, ज्यादा सच्ची और यकीनन ज्यादा दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। यह हमें न सिर्फ इतिहास को बल्कि शायद खुद को और अपनी आज की दुनिया को भी थोड़ा बेहतर समझने में मदद करता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकात्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।